अब आखिरी टॉपिक है आज के सबक का, जिसके अंदर मुसलमानों के दिमागों में भरने वाली एक हवा निकाली जा रही है। ग़ज़वे हुनैन का मौका है, पढ़ लेते हैं आयतों को, तो फिर इसकी जितनी भी मुख्तसर सी वज़ाहत काफ़ी हुई वो आपके साथ रखूँगी। यहाँ तक ये कह दूँ कि सूरत का एक मौजू पूरा हो गया। सूरत के दूसरे और तीसरे रकू पर जो बात शुरू हुई थी ना, जो रमज़ान 8 हिजरी में से पहले नाजिल हुआ था, वो ख़त्म हुआ। अब यहाँ से चौथा रुकू शुरू हो रहा है, तो यहाँ से आप देखेंगे कि सूरत की जो इब्तदाई 6 आयतें थी ना, जो सवाल किया गया था, उसके साथ अब इसका रब्ता जुड़ रहा है। वहाँ गज़वा बदर की फतह की खूबियाँ थी, यहाँ अब हुनैन के झटके हैं। आइए देखते हैं। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं आयत 25 में, लक़द नसरकुमुल्लाहु फ़ी मवातिना कसीरा, ए मुसलमानों अल्लाह ने तुम्हारी मदद की है बहुत से मौाक़े पर। कौन कौन से मौाक़े, सारे ही लिख लें, बदर से लेकर हुनैन तक के जो भी हुए, लेकिन ख़ास तौर पे व यौम हुनैन, और ख़ास तौर पर हुनैन के दिन। क्या हुआ था उस दिन, इज़ा जबतकुम कसरतकुम, जब तुम्हें अपनी कसरत पर नाज हो गया था, तुम बहुत फलने फूलने लग गए थे, हमने तो बड़ा तीर मार लिया, हम तो अब बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, अल्लाह ने तुम्हें बहुत अच्छी जगह दे दी है। एक इंसान के ऊपर फेज आता है कि वो छोटी सी चीज़ को भी बड़ा बना लेता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जब तुम्हें ये ज़रा सा ख्याल भी आ गया ना कि तुम बहुत बड़े बन गए हो, कसरत के ऊपर मान होने लगा, फिर अल्लाह ने उसके बाद क्या किया, एक झटका दिया। और क्या हुआ तुम्हारे साथ, फलम तुगनी अन्कुम शैया, तो वो कसरत तुम्हारे कुछ काम ना सकी, बल्कि वदाक़त अलैकुमुल अर्दु बिमा रहबत, बल्कि ज़मीन पूरी फराखी के बावजूद तुम पर तंग हो गई, सुम्मा वल्लैतुम मुदबिरीन, फिर तुम पीठ मोड़ कर भाग निकले। ये तो शुरू का मामला था, फिर क्या हुआ, आयत 26, ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ, پھر اللہ نے نازل فرمائی اپنی طرف سے تسکین اپنے رسول اور اہل ایمان پر, اور وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا, اور اس وقت بھی اللہ کی مدد آئی جب اس نے تم پر ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں۔ اور اس کے برعکس دوسری طرف کیا ہو رہا تھا, ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ, پھر اللہ اس کے بعد تم پر پلٹ آیا, یعنی تمہاری توبہ قبول کی, عَلَى مَن يَشَاءُ, اپنے بندوں میں سے جس کی چاہی, کیونکہ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ, اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ نام سے ظاہر ہے یہ ساری آیات جو بھی پڑھی یہ غزوہ حنین کے بارے میں, تھوڑی سی باتیں ایسی پوائنٹس کی صورت میں نوٹ کر لیجئے۔ ये जो हिस्सा हम पढ़ रहे हैं ना, ये सन 9 हिजरी के करीब का ज़िक्र है। इससे पहले ग़ज़वा हुनैन शवाल 8 हिजरी में वक़ू पज़ीर हो चुका था। फ़तह मक्का से चंद दिन बाद हुआ, 6 शवाल 8 हिजरी थी, हफ्ते का दिन था। अल्लाह के नबी सल्लम मक्का से रवाना हुए, 10 शवाल को ये ग़ज़वा हुआ। कबीला ख्वाजन और सकीफ़ के साथ ये जंग हुई, जिसमें छोटे छोटे और नाम है आपको ज़रूरत नहीं, मुज़र, जशम, साद बिन अबू बकर और बनू हलाल वगैरह। वादिय ओतास में स्टॉप ओवर हुआ, यानी पड़ाव डाला, हुनैन नाम की जगह के करीब ये जगह वाक़ तकरीबन मक्का से 10 मील दूर है। अगर आप आज भी अराफात जाएँ तो दिखेगा, बल्कि ताइफ़ के रास्ते में भी आता है। मुसलमानों की तादाद 12,000 थी, 12,000, इतनी बड़ी तादाद कभी पहले इकट्ठी नहीं हुई, और इनमें से 10,000 तो वो मुसलमान थे जो फतेह मक्का के मौके पर अल्लाह के नबी के साथ थे, और 2,000 न्यू मुस्लिम थे। देखिए, चंद दिन में 2,000 लोग मुसलमान हो गए, वही सूरत नसर याद कर लीजिए, वयदखुलूना नास फी दीनिल्लाही अफवाजा, जब कामयाबियाँ होती हैं फिर बड़े लोग आ जाते हैं दीन में। असल कुर्बानियों के दिनों में आने वाली बात थी जिसमें कम लोग होते हैं। बहरहाल 12,000 का लश्कर था, मुसलमानों को फ़ख्र हो गया, دل میں خیال آ گیا کہ آگے تو 313 تھے تو فتح ہوئی، اور غزوہ احد میں تو 700 تھے، پھر بھی اللہ نے اینڈ پہ مقابلہ برابر کر دیا، آج تو 12,000 ہے. اب یہ جو نیو مسلم تھے نا، ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کی ابھی ٹریننگ نہیں ہوئی تھی. آپ کہہ لیجئے کہ انڈر ٹریننگ گروپ تھا، ساتھ ٹرینڈ لوگ بھی تھے، ایکسپرٹس بھی تھے، اور دوسرے بھی تھے، ابھی ایمان کے بھی وہ درجے نہیں تھے. مسلمانوں کی لشکر کشی جو تھی وہ خوازم اور بنو سقیف کے خلاف تھی، جو طائف کی خوبصورت وادیوں میں رہتے تھے. مسلمان اس سے پہلے کئی بار تھوڑے سے اسلحے اور تھوڑی تعداد سے کفار کے مقابلے میں جیت چکے تھے. چنانچہ کچھ لوگوں کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا کہ آج مسلمانوں پر کون غالب آ سکتا ہے. اور اس جملے کو سنتے اور بولتے اور پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں ٹائٹینک والا جملہ آ گیا کہ اس کو تو گاڈ بھی نہیں ڈبو سکتا. بس یہ جملہ اللہ کو پسند نہیں آیا. اللہ نے خوازن اور سکیف کے قبیلوں کے ہاتھوں سے تیر چلوائے، بہت بڑے تیر انداز تھے، اور پہاڑیوں اور گھاٹیوں میں جمع ہو گئے، صفیں بنائی، بہت اچھی طرح آرگنائز تھے. جب مسلمان غخنین کی وادی سے پہنچے تو انہوں نے تیروں کی بچھاڑ کر دی. مسلمان ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہ سب کچھ ہوگا، لہذا لشکر میں بھگدڑ مچ گئی. 12,000 کا لشکر تتر بتر ہو گیا، اور جب شروع کا جو ہراول دستہ ہوتا ہے اس میں اس طرح پھیلا تو وہ بھاگے تو پیچھے والے لوگ دھکیلتے گئے. بعض روایات میں آتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ صرف 30 سے 40 آدمی رہ گئے. یہ بڑا سخت وقت ہوتا ہے، اللہ کے راستوں میں ایسے جھٹکے پڑتے ہیں کہ صرف مخلصین آپ کے ساتھ رہ جاتے ہیں، بلکہ کئی مخلص بھی چھٹ جاتے ہیں، امتحان ہوتا ہے ان کا. بہرحال کتنا سخت وقت ہوگا اللہ کے نبی کے لیے کہ اپنی بنی ہوئی کھیتی کو بکھرتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اس وقت پھر کچھ کہتے ہیں کہ نہیں 300-400 بھی تھے، کتنے تھے بہرحال بکھر کے تو بہت ہے، بہت بڑا واقعہ تھا. اس وقت اللہ کے نبی اپنی اونٹنی سے نیچے اترے، اپنے ہاتھ میں خود جھنڈا پکڑ لے کہ اب تم نہیں کرتے یہ کام، میں کروں گا، اور بلند آواز سے پھر اپنے رجزیہ شعر پڑے. دکھی شعر تھے، ان نبی جلا کذب، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں، ان ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یعنی میں نبی ہوں، 12,000 میرا ساتھ دیتے ہیں یا 300-400 دیتے ہیں یا 30-40 دیتے ہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تو اللہ کے بھروسے پہ کام کرتا ہوں. اور پھر آپ نے لوگوں کو پکارا، الیہ یا عباد اللہ، الیہ یا عباد اللہ، میری طرف آؤ اللہ کے بندو، میری طرف آؤ. آپ کی یہ آواز حضرت عباس نے سن لی، جن کی اپنی آواز بلند تھی، انہوں نے بھی کھڑے ہو کر پکارا، او مہاجرین اور انصار کدھر گئے تمہارے دعوے، او صحابہ بدر کدھر ہو، او صحابہ شجرت ال یعنی بیت رضوان کرنے والوں کدھر ہو. اب جب لوگوں کو ان کے ٹائٹل سے پکارا گیا نا، او کدھر ہو بھائی لیڈرز، ہو کدھر ہو بڑے فلاں، تو پھر لوگ پلٹے اور ان کو احساس ہوا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے. پھر سب ملے، سب یونائٹ ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر میدان کا نقشہ بدل دیا. ثم انزل اللہ سکینت، پھر آئی مدد، اور احد کی طرح اس میں بھی اس جھٹکے کے بعد اللہ نے مدد کی، اور اللہ اور اس کے رسول پہ تسکین نازل کر دی، اور لشکر اتارے. اب یہ کون سے لشکر تھے، فرشتے تھے یا جو بھی تھے اللہ کو پتہ ہے، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان جیت گئے. کیا پتہ چلا اس سے کہ کبھی اپنی ذات پہ مان نہیں کرنا. ہمارے پاس بہت ریسورسز ہیں، اب ہم بہت اچھے ہو گئے ہیں، اب ہمیں بہت کام کرنے آ گئے ہیں، اسی دن ہی کوئی گڑبڑ ہو جائے گی. قیدیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ شریک بہن شیما آئیں بنت خارصہ، رضائی بہن تھی. پھر ان کے ذریعے لوگوں نے سفارش کی کہ اللہ کے نبی آپ کی بہن ہے، ان کے قبیلے کے قیدیوں کو آزاد کر دیں. تو آپ نے ان سب کو آزاد کر دیا. سوال پیدا ہوتا ہے، آج مسلمانوں پر اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ مدد آتی ہے اسلام پر. جب مسلمانوں میں اسلام نہیں دکھتا تو مدد نہیں آتی. تو آج ہم سب کے لیے آیتوں میں یہی سبق ہے کہ اپنے آپ کو بڑے بڑے نعروں اور دعووں میں ڈالنے کی بجائے کام کا بنا لیں. جب مسلمانوں کے پاس اسلام ہوگا اللہ کی مدد آئے گی. یہاں پہ آپ دیکھیے کہ یہ موضوع پورا ہو کے اب آخری آج ہمارے سبق کی ہے، اس کو سمجھ لیں. اس کی زیادہ بات ہم اگلے سبق کے ساتھ انشاءاللہ کریں گے کل. آیت 28، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، انما المشرکون نجس، بے شک یہ مشرکین تو ناپاک ہیں، لہذا فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، لہذا اس سال کے بعد سے مسجد حرام کے قریب بھی نہ پھٹکیں. ये कब पुकार लगी होगी आप सूरत का शुरू याद करें। बरातु मिन अल्लाही व रसूली पढ़ चुके हैं ना। सन 9 हिजरी में हज के मौके पे ऐलान हो गया था, 4 महीने की मोहलत थी, अहदों को इनके पूरा कर दो, हत्ता यस्मा कलामुल्ला। अब मोहलत गुजर गई। सन 9 हिजरी के हज में मुशरिकीन आए थे, लेकिन अब हतमी तौर पर इस आयत में बता दिया कि अब अगले साल कोई मुशरिक हज के लिए नहीं आएगा। बादामिहिम हाजा। अब जब मुशरिकीन के हज के लिए ना आने की खबर सुनी तो कुछ लोगों के दिल में गम आया, जिनके कारोबार चलते थे हाजियों के आने पे, कि भाई ये तो बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा, कस्टमर ही नहीं आएंगे। तो कवाइन खेफ तो मई लतन, और अगर तुम्हें अंदेशा हो फकर का, फसौफ युग्निकुमुल्लाहु मिन फदलिही इंशा, तन करीब अल्लाह तुम्हें गनी कर देगा अपने फजल से अगर वो चाहेगा। इन्नल्लाह अलीमुन हकीम, वो खूब जानने वाला और हिकमत वाला। यानी अगर ये सोच रहे हो कि हाजियों के कम आने पर वो नजराने, वो कुर्बानियाँ, वो शॉपिंग कम हो जाएगी, तो अल्लाह की जात पे भरोसा रखो। इतनी दौलत अल्लाह तुम्हें देने वाले आने वाले दिनों में कि तुम संभाल नहीं सकोगे। और वाकई आपको पता है कि अल्लाह के नबी की वफात के चंद सालों के बाद हालात बिल्कुल बदल गए। फारस, रोम, सब सल्तनतें मुसलमानों को मिली। माले गनीमत का कहते हैं गोया के एक सैलाब था जो उमड़ता आ रहा था। इतना माल मुसलमानों को मिल गया कि संभालना मुश्किल था। इसी के बारे में अल्लाह के नबी ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में खबर दी थी कि फवल्लाही, बस अल्लाह की कसम है मुसलमानों, लल फकरू, फकर नहीं, अख्शा अलैकुम, मैं तुम पर फकर और जो गुर्बत है उसका फिक्र नहीं करता, बल्कि मुझे इस बात का अंदेशा कि तुम पर दुनिया कुशादा कर दी जाएगी, तुम्हारे कदमों में मालो दौलत के अंबार लग जाएंगे जैसे तुमसे पहले लोगों को दिए गए, फिर तुम एक से दूसरे के आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, फिर वो तुम्हें तबाहो बर्बाद करके रख देगी जैसे कि इसने दूसरे लोगों को तबाहो बर्बाद किया था। तो ये था आज का सबक। आखिरी हिस्से में देखिए, मुशरिकीन को नजस कहा गया। सवाल पैदा होता है कि मुशरिक कैसा नजस है? तो दो तरह के नजस है मुशरिक में। नंबर एक, अंदरूनी नजस। क्यों? शिर्क की वजह से। ला इलाहा इल्लल्लाह दिल को पाक कर देता है बुतों से, तो दिल गंदा। दूसरी है बैरूनी निजासत। क्या? कि तहारत और गुसल वगैरह का एहतमाम नहीं करते। सोचें भी गलत होती हैं। हुक्म दे दिया क्या बनाएंगे? आप बताइए क्या ये हुक्म जुल्म है? इस आयत पे अमल करते हुए उमर बिन अब्दुल अजीज मस्जिदों में मुशरिकों के आने से मना करते थे। उनका इत्तेहाद था कि ये नजस है, ना आए। बहरहाल आज के दौर में किस सोच से आते हैं ये डिपेंड करेगा। अल्लाह के नबी ने समामा बिन असाल को मस्जिद में ही बांधा था। इसी तरह मकसद ये कि आम तौर पे इसको कोई टूरिज्म तो नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अगर मुसलमान अच्छे काम कर रहे हैं तो मुशरिक वहां आएंगे तो फिर वो सीखेंगे और देखेंगे। फिर यहाँ जो लफ्ज़ आया ना कि तुम्हें गुर्बत का डर है, अइला, तो अइला को जरा लिख लीजिए, अयाल के खर्च से बोझलूना। अहलो याल किसको कहते हैं? बीवी बच्चे, अहल बीवी, अयाल बच्चे। तो अइला कहते हैं वो गुर्बत के बच्चों का खर्चा ही नहीं पूरा हो रहा। औल कहते हैं हर वो चीज़ जो इंसान को बोझल कर दे। माँ के पेट में भी होती है ना जिससे बच्चा बंदा होता है। अयाल वो अहले खाना जिनकी जिम्मेदारी इंसान पर हो, और अहिला फिर अयाल के बोझ से बोझल होना। दर्जे होते हैं आपको तो गरीबी के। सबसे पहला दर्जा होता है फकर, मुफलसी, नादारी, इंतहाई तंग दस्ती। फिर मस्कनत, मस्कीनी, जिसमें बमुश्किल गुजारो, हैंड टू माउथ इंग्लिश में लिख लें। फिर अहिला होता है जिसका अभी तस्करा किया। फिर इसका अगला दर्जा था मलक, आगे पढ़ेंगे सूरत बनी इसराइल में, इमलाक, ला तक्तुल औलादकुम मिन खशयतिल इमलाक। फिर इसके बाद कतर, फिर इसके बाद बासा, फिर मुतराबा। जहां जहां ये लफ्ज आएंगे आपको इसकी मदद करूंगी इंशाल्लाह। तो ये था आज का सबक, बहुत दिल को उदास करने वाला। फिक्र लग गई है कि हम इधर कहाँ हैं। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें इन सारी चीज़ों में कामयाब कर दे। पूरे सबक से जो बात मुझे मिली आज वो यही मिली है, खुशफहमियों का शिकार ना हो, अपनी ज़ात पे घमंड ना करो, नज़रें अल्लाह पर लगाई रखो, फतह और शिकस्त से कुछ नहीं होता, फतह और शिकस्त सेम है। असल यह कि तुम अल्लाह के रास्ते में मेहनत करने वाले हो, जिसको अल्लाह के काम करने का मौका मिल गया वो कामयाब है। आप भी सोचते होंगे कि हम बहुत सारे काम करते हैं और बहुत सारी गलतियां करते हैं, फिर भी आप मुबारक के लायक हैं क्योंकि आप अल्लाह के काम तो करते हैं। हम पढ़ते हैं, टेस्ट अच्छे नहीं होते, हम तैयारी करते हैं, जो भी आप में से अपने लिए सोचे, आप आ रहे हैं तो आप बेहतर हैं, आप काम कर रहे हैं तो बेहतर हैं उन सब से जो कुछ नहीं कर रहे। बस दफ़ा शैतान का ये भी एक धोखा होता है कि मेरे से क्या होना है, मैं कौन से अच्छे करती हूँ। जैसे मैं आप साथियों के मुँह से सुनती रहती हूँ कि हमारे काम कोई अच्छे हैं, ये कोई अच्छे काम है, तो मैंने हमेशा आपको यही तसल्ली दी, काम करते रहें। ऐसा ना हो कि अल्लाह हमें इस जॉब से हटा दे, ले आउट हो जाए। वही बंदा अल्लाह को कल जाके रो के दिखा देगा कि अल्लाह आखिरी कोशिश की है मैंने तुझे दिखाने की, मैं है ही कमजोर थी। जैसे मैंने आज पढ़ाया तो कोई ये मैंने पढ़ाया, मैंने तो हक ही नहीं अदा किया, लेकिन मैं कल अल्लाह को कह दूंगी अल्लाह मुझे जो आता था मैंने वही किया, जैसा मैं कर सकती थी कर दिया, करा दिया। आज अल्लाह के मौका था कि आपको रिकॉर्डिंग सुनवाऊं, और आप अगर सुन के देखेंगे उसमें और भी कई चीजें हैं, पर मैंने कहा नहीं, इतने दिन से ये साथी महरूम है इस तरह बैठ के सुनने से, तो मैं इनके साथ शेयर करूंगी। तो ये मेरी आपसे मोहब्बत, इससे पहले हमारा दूसरा सेशन था। तो बस दफा फैसले लेने पड़ते हैं इस सोच पे कि हम अल्लाह को ये पेश करें। आखिरी बात करके इंशाल्लाह छोड़ती हूँ आपको, और वो क्या है कि हमेशा अपने डिपॉजिट में कुछ रखा करें। जैसे पर्स में कुछ ना कुछ हम नोट डाल देते हैं ना कि कहीं मुश्किल में काम आएगा, इसी तरह कोई ना कोई मरना जीना जिसको कहते हैं रखा ही होता है अपने पास इंसानों ने, अपने आमाल में कुछ ना कुछ ऐसे खालिस अमल डाल दें, मुश्किल हालात की नेकी, बीमार हैं तो उस दिन की नेकी, आ नहीं सकते थे तो उस दिन आने की नेकी, मेहमान थे तो उनको रोक के दूसरी तरह करने की। जो आज आठ रिश्तों की जंग पड़ी है, आज बैठ के तराजू बनाए, आप पिछले साल वालों ने बनाया था, आप भी बनाए, एक तराजू बनाए, एक में आठ रिश्ते, दूसरे में ये तीन, कहाँ झुकती हूँ। और याद रखिए, बैलेंस है तो ठीक है, जब अल्लाह के रास्ते से आप निकल गए ना, फिर आप कुछ नहीं है, वल्लाही फिर कुछ नहीं है। तो जो चीज आपने छुपा के रखनी है वो रखनी क्यों है, ये भी तो पूछे। कोई ऐसा खलूस वाला काम, मुश्किल हालात, आपका दिल नहीं कर रहा, वो काम करें। क्यों? कल अल्लाह को उस वक्त पेश करूंगी जब अल्लाह को मेरे ऊपर गुस्सा आ रहा होगा कि अल्लाह सारे काम तो ठीक थे, वो उस दिन का काम मैंने सिर्फ तेरे लिए किया था। तो इंशाल्लाह ताला कल इससे आगे अब चलेंगे, बहुत ही खूबसूरत आयतें अगली भी। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अपने हक में बेहतरीन फैसले करने वाला बना दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समील अलीम, وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى خير خلقه وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين.